गौर लीला कथा के दूसरे दिन आपका स्वागत है। कल सुबह और दोपहर में हम ये चर्चा कर रहे थे कि गया से नवद्वीप लौटने के बाद किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उत्तमा भक्ति महाभाव के लक्षण प्रकट किए, निरंतर भक्तों के संग में कृष्ण कीर्तन और कृष्ण कथा किया करते थे और कृष्ण की विरह में हमेशा कृष्ण का स्मरण किया करते थे। सदैव यही कहा करते थे, कहाँ है वो श्री कृष्ण, बांसुरी बजाने वाले वो सांवले रंग के तमाल वृक्ष के रंग के कृष्ण कहाँ है। इस तरह से बार बार वैष्णवों के बीच में अपने हृदय की वेदना को व्यक्त करते थे। हमें याद रखना है कि जिन लक्षणों के बारे में हमने कल सुना था वो किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। जिन भावों को चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया था उसे महाभाव कहते हैं। ये महाभाव एक साधारण या असाधारण जीव के लिए भी संभव नहीं है। आपको स्मरण होगा कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने की श्रीमती राधा रानी के भाव को और उनकी कांति को अपनाया है। राधा भाव द्युति सुगलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो ये महाभाव केवल श्रीमती राधा रानी का है और कोई नहीं। इस सारे जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, यहाँ तक कि भगवान के धाम में भी, गोलोक वृंदावन में भी, जिन भावों को चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया वो केवल श्रीमती राधा रानी प्रकट कर सकती है। हालांकि इतने शुद्ध भक्त हैं और हुए और उन्होंने भी इतने सारे भक्ति के लक्षण प्रकट किए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की तरह कोई नहीं कर सकता, नहीं नकल करना चाहिए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप पर रहकर हर दिन ऐसे कृष्ण प्रेम के रसों का स्वाद लेते रहे। सखी माता उधर काफी चिंतित रहती थी, समझ नहीं पाती थी कि ये क्या है। हमने देखा कि नवद्वीप के जो साधारण लोग थे, जो भक्त नहीं थे, वो तो सोचते थे कि चैतन्य महाविनिमय पंडित से पागल हो गया है। लेकिन श्रीवास पंडित जब आए उन्होंने समझाया कि मैं भी इस तरह से पागल होना चाहता हूँ। अगर ये पागलपन है तो सारे दुनिया को ऐसे पागलपन चाहिए, क्योंकि ये तो जीवन की परिपूर्णता है। वैसे तो दुनिया में सभी लोग पागल है, भगवान को भूल चुके हैं। कौन व्यक्ति है तो जो कि सबसे बड़े धन को त्याग कर इस संसार के क्षणिक धन को, तुच्छ सुख को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, वो तो पागल ही होगा। तो असली बुद्धिमान व्यक्ति तो वो है जो कि असली धन प्राप्त करना चाहता है। इस संसार का धन क्या है, आज है कल नहीं है। ये संसार का सुख क्या है, आज है कल नहीं है। और ये संसार का सुख है भी जो कि दुख का कारण है। तो सही बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो कृष्ण भक्ति में लग जाता है। तो श्रीवास पंडित ने समझाया कि ये तो सर्वोत्तम स्तर की भक्ति के लक्षण है। तो सखी माता बिल्कुल चिंतित मत होइए। चैतन्य महाप्रभु ने फिर श्रीवास पंडित के घर में जाकर उनको आश्वासन दिया कि नवाब से, बादशाह से डरने की कोई बात नहीं, कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। और इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने बालिका नारायणी के ऊपर असीम कृपा बरसाई और उसके मुख से कृष्ण का नाम निकाला और आंखों से गंगा की तरह आंसू बहने लगे उस बच्ची के। तो ये चमत्कार भी उन्होंने श्रीवास पंडित के घर में कर दिखाया। इस तरह से दिन बीतते गए। भक्ति के सागर में खुद निमय पंडित डूबे रहते और भक्तों को भी साथ में ले जाते हैं। कभी कभी वो अपने भक्तों के कंधों पे अपना सर रख के रोते रोने लगते, कहाँ है कृष्ण, कहाँ वो कृष्ण हमको छोड़कर चले गए। और उनकी इस विरह की भावना को देखकर सारे भक्त भी भाव विभोर हो जाते। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि इतनी तीव्रता की भावना थी कि लकड़ी और पत्थर भी पिघल जाता, ये है भाव। इसलिए भक्तों में भक्ति की भाषा में ऐसी भावना रहती है कि कोई अगर भगवान का नाम का उच्चारण करने से अगर उसके आंखों में आंसू नहीं आ जाते तो उसका हृदय लोहे का है, क्योंकि लोहा तो पिघलता नहीं है ना आसानी से। लेकिन जो भक्त का हृदय होता है भगवान का, एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से ही उसका हृदय पिघल जाता है। अगर नहीं पिघलता है इसका मतलब है कि उसका हृदय लोहे का या लकड़ी का या पत्थर का है। लेकिन हमें फिर भी याद रखना है कि ये कोई कृत्रिम चीज नहीं है, आर्टिफिशियल चीज नहीं है, नकल करने की चीज नहीं है। हरिनाम लेते लेते स्वाभाविक तौर से जब हमारे हृदय से सारे अनर्थों का निवारण हो जाएगा, वैसे ही हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम या भक्ति की भावना जागृत होगी, धीरे धीरे क्रम से। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग में रहकर ऐसे भक्ति किया करते थे। ऐसे अति अद्भुत लक्षण प्रकट कर रहे थे कि वृंदावन दास ठाकुर संक्षेप में ही इनका वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जब वो रोते तो लगातार 6 घंटे रोते, गंगा की तरह पानी बहता, और कोई समझते नहीं कि इतने आंसू एक आदमी के अंदर से आए, पानी है कहाँ इतना है। और जब वो हंसने लगते भाव में आकर 3 घंटे लगातार हंसते। हम कल्पना नहीं कर सकते इन चीजों की। और फिर जब कभी कभी बेहोश हो पड़ते हैं तो उनके सांस 3 घंटे बंद हो जाते। और भक्त जो है थोड़े कपास या कोई पंख वगैरह वहां पर रखते उनके नसिकों के सामने, और वो हिलता नहीं, मतलब कोई सांस नहीं था उनमें, फिर 3 घंटे के बाद जाग जाते। कभी कभी अपने ऐश्वर्य को प्रकट करते, कभी कभी किसी एक विशेष भक्त के या उनके अवतार का भाव ग्रहण करते। एक दिन कहते अक्रूर के भाव में कि चलो नंद महाराज चलिए, हमें जाना है कंस के मलयुद्ध के लिए, तो मैं कृष्ण बलराम को ले जा रहा हूँ, आप भी चलिए, आप सब चलिए, मलयुद्ध का आनंद लेते हैं। इस तरह से समय बीतता गया नवद्वीप में। एक बार निमाय पंडित ने वराहदेव की स्तुति में एक श्लोक सुना, तो जैसे ही वो सुना तो वराहदेव के भाव में आए, क्योंकि वराहदेव, मत्स्यदेव, कूर्मदेव, नरसिंहदेव ये सब कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण अवतारी हैं, और ये अन्य सब अवतार हैं। अवतारी मतलब अवतारों के उद्गम, उनके स्रोत। चैतन्य महाप्रभु या निमाय पंडित ये अवतार नहीं है, अवतारी है, स्वयं श्री कृष्ण है। केवल भाव बदल के आए हैं, शरीर की कांति भी वो बदल के आए हैं। तो तुरंत वराह के भाव में आ गए, और वराहदेव के भाव में आकर सीधे अपने प्रिय भक्त मुरारी गुप्त के पास गए। मुरारी गुप्त वास्तव में ये हनुमान जी के अंशावतार हैं, क्योंकि जितने भी भगवान के सारे भक्त हैं जिन्होंने भाग लिए थे भगवान की लीला में, वो सब चैतन्य महाप्रभु के इस विशेष लीला में भाग लेने के लिए आए, इस लीला का स्वाद लेने के लिए आए। तो मुरारी गुप्ता के घर में जब गए तो मुरारी गुप्ता अपने घर में अपनी पूजा कर रहे थे भगवान की, तो तुरंत जाकर जब आए अंदर चैतन्य महाप्रभु तो मुरारी गुप्त ने दंडवत किया, उनको प्रणाम किया, और फिर जोर से निमाय पंडित चिल्लाने लगे, शुकर शुकर, शुकर मतलब वराह, शुकर रूप। तो शुकर का नाम सुनकर मुरारी गुप्ता आश्चर्यचकित होकर स्तंभित होकर इधर उधर देखने लगे, क्या बोल रहे हैं, कहाँ शुकर देख रहे हैं ये निमाय पंडित। फिर सामने देखा तो स्वयं निमय पंडित ने वराह रूप धारण किया था, शुकर रूप, और उनके चार उंखुरों को वो नीचे जमीन पर गा रहे थे और फिर ऊपर उठे। और वहाँ पूजा घर में उन्होंने देखा कि कोने में एक कमंडलू है, तो अपने दंशों से उन्होंने इस कमंडलू को उठाया, मानो कि वो पृथ्वी को उठा रहे हैं, जैसे वराह देव ने गर्भोदक सागर से पृथ्वी माता को उठाया था। तो ऐसे उठाया और मुरारी गुप्ता तो इतने आश्चर्यचकित हो गए थे कि वो कुछ बोल नहीं पाए, कर नहीं पाए। और फिर वराह भगवान ने स्वयं मुरारी गुप्ते से कहा, मुरारी मेरी स्तुति करो, करो मेरी स्तुति, क्यों चुप बैठे हो, जल्दी से करो। अब स्तुति क्या करे, कोई शब्द निकले नहीं, चकाचौंध रह गए, बोलने का प्रयास करे तो शब्द अटक जाए गले में, कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर थोड़ी शांति से फिर बोले, अरे डरो नहीं, मेरी स्तुति करो, तो पहचाना नहीं मुझे, इतने दिन में नवद्वीप में तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हें पहचाना नहीं। फिर धीरे धीरे से हौसला बढ़ गया मुरारी गुप्त का, फिर धीरे धीरे से प्रार्थना करने लगे कि आपका गुणगान भला कौन कर सकता है, अनंत देव जिनके अपने सहस्र वदनों से वो आपका गुणगान करने का प्रयास करते हैं, अनादि काल से करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका गुणगान समाप्त नहीं हुआ है, आपकी महिमा तो अपार है, और यहाँ तक भी लक्ष्मी देवी भी नहीं कर सकती, हालांकि वो आपके वक्षस्थल पर निवास करती हैं। लक्ष्मी देवी की बात तो दूर है, स्वयं जो वेद हैं, जो आपके आदेश हैं, वो भी आपका पर्याप्त मात्रा में गुणगान नहीं कर सकते हैं। हालांकि सारे लोग वेदों के आदेशों का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी आपका गुणगान वेदों में भी पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता है। जो इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, आपके लोम कूप से उत्पन्न होते हैं, ये आपकी गुण है, आप सदैव दिव्य आनंद में स्थित रहते हैं, इसलिए केवल आप ही हैं जो आपका गुणगान कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। और उन्हें एक महत्वपूर्ण बात कही मुरारी गुप्त ने, कहा कि अगर आप किसी के ऊपर कृपा करें तभी जाकर वो व्यक्ति आपको जान सकता है, आपकी महिमा को जान सकता है। इसका मतलब है कि अगर भगवान को जानना है, भगवान कितने महान है वो जानना है, तो इसके लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। जब तक भगवान हमें वो अंदर से प्रेरणा नहीं देंगे, तब तक हम भगवान की महानता को भी नहीं जान पाएंगे। अंग्रेजी में भी कहावत है, गॉड इज ग्रेट, कहने के लिए तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं, गॉड इज ग्रेट मानते हैं, अच्छी बात है, लोग मानते हैं कि भगवान महान है, लेकिन वास्तव में भगवान कितने महान है अगर ये हमें जानना है, तो स्वयं जब तक भगवान हमें अंदर से इस बात का ज्ञान नहीं देंगे, हृदय से, तब तक हम नहीं जान पाएंगे। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ और अंदर ही से मैं ज्ञान, स्मृति और विस्मृति देता हूँ। ब्रह्मा जी की भी एक सुंदर प्रार्थना है श्रीमद् भागवत में, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्यमेकोऽपि चिरं विचिन्वन्। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं कि आप के चरण कमल, ये जो दो चरण कमलों की कृपा लेशानुगृहीत एव ही, लेश मात्र भी जब तक कोई व्यक्ति आपकी कृपा का पात्र नहीं होता है, तब तक वो आपकी महिमा को जान नहीं सकता। लेकिन अगर लेश मात्र भी कृपा मिल गई, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय, पद अम्बुजद्वय, आपके दो चरण कमलों की कृपा प्रसाद लेश अनुग्रहित एव ही, लेश मात्र भी उसे अगर आपके चरण कमलों की कृपा प्राप्त हो गई, जाना कि तत्वन भगवन महिमो, वो आपकी महिमा को जान सकता है। न च अन्यन एव चिरम विचिन्वन, और अगर कोई व्यक्ति चिरकाल मतलब बहुत लंबे समय तक चिरम विचिन्वन वो अपने मन से अपने बुद्धि से वो आपको जानने का प्रयास करे, आपकी महिमा को जानने का प्रयास करे, तो ये असंभव है। केवल अगर आप इच्छा करें, आप अपने आप को प्रकट कराना चाहते हैं, तभी व्यक्ति जान सकता है आपको। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, आजकल के दुनिया में बहुत बड़े माने जाने व्यक्ति हैं, कई किताबें लिखी हैं, कई पुरस्कार मिले हैं, और आजकल लोग मानते हैं कि शायद इनकी जैसा कोई शायद बुद्धिमान व्यक्ति आज पृथ्वी लोक पर नहीं होगा। वैसे इंग्लैंड में रहते हैं, जब वो भारत में आए थे कई साल पहले तो अखबार में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था, वैसे तो वो भगवान में मानते नहीं है, आजकल ये हमारी ट्रेजेडी है कि दुख की बात है कि जितने बड़े से बड़े बुद्धिमान लोग हैं मतलब जिनकी बुद्धि की शक्ति ज्यादा है वो सब नास्तिक हो गए, भगवान को नहीं मानते। बुद्धि का प्रयोग होना चाहिए भगवान के अस्तित्व को सिद्ध कर दिखाने के लिए, लेकिन ये लोग भगवान के अस्तित्व को नकारने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, और इसीलिए समाज की ये दशा हो गई है, क्योंकि ये सब बड़े बड़े लोग नास्तिक होते जा रहे हैं। तो एक बड़ा फैशन ही हो गया आजकल कि भगवान में भगवत भक्ति की संस्कृति में रुचि नहीं लेना। तो वो कहने लगे कि मैं भगवान के मन को जानना चाहता हूं अपने गणित से। वैसे उन्होंने दूसरी जगह स्पष्ट कह दिया कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, क्योंकि उस पत्रकार ने स्पष्ट उनसे पूछा, आप मानते हैं कि भगवान है या नहीं है, आपका मत क्या है? उन्होंने कहा नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि मैं भगवान के मन को जानना चाहता हूं कि भगवान के मन में क्या है, भगवान ने कैसे सृष्टि की रचना की है। तो इसका उत्तर क्या है? उत्तर है कि आपको करोड़ों साल की भी जीवन की अवधि मिले, आपको अब जितनी बुद्धि है उससे करोड़ों गुना ज्यादा बुद्धि मिले, फिर भी आप चिरकाल तक भी आपके गणित करते रहे, आप कभी भी भगवान के महिमा को भगवान के मन को समझ नहीं पाएंगे। ये पद्धति नहीं है। जब तक भगवान स्वयं इच्छा ना करें आप उनकी सृष्टि को भी जान नहीं पाएंगे, उनकी सृष्टि के छोटे से कोने को भी कण को भी नहीं जान पाएंगे, एक अणु को नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि आजकल प्रगति के नाम पे केवल भ्रांति बढ़ रही है। जो स्वयं वैज्ञानिक हैं, वो सोचते हैं कि हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, भ्रांतियां बढ़ रही हैं, कंफ्यूजन बढ़ रहा है, अज्ञान बढ़ रहा है। 50 साल पहले आप में से जो विज्ञान पढ़ चुके हैं स्कूल में, आप जानते हैं कि अणु के बारे में कितना सरल ज्ञान था कि बीच में कुछ होता है फिर और उनके थोड़े घूमते हैं, बस सरल था। आजकल इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इतना कठिन हो गया ये सब, और लोग कोई भी समझ नहीं पाता कि क्या चल रहा है अणु के अंदर। तो वो समझते हैं कि देखो हमारा ज्ञान इतना बढ़ गया, पहले हम कहते थे कि केवल अणु इतना सरल है, अभी हम जान सके कि इतना कठिन है समझना अणु, मतलब उनका ज्ञान है ये समझना कि कितना कठिन है ये समझना। तो प्रगति नहीं कर रहे हैं, केवल ये लोगों को धोखों में डाला जा रहा है कि हम बहुत प्रगति कर चुके हैं, और लोग धोखे में आ जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि बड़े बड़े कंप्यूटर आ गए, बड़े बड़े रॉकेट हवाई जहाज आ गए, और ये सब तकनीकी ज्ञान के चमत्कार आदमी देखता है और सोचता है ये हमारे भगवान है, ये जो वैज्ञानिक लोग हैं ये सब कुछ बना रहे हमारे सुख सुविधा के लिए, ये हमारे भगवान हो गए, इनकी ही पूजा करते हैं, और आज ये लोग यही बन गए हैं। तो इनके जो सिद्धांत है, इनकी जो ये जो लोग प्रचार करते हैं, तो लोग इसी को स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से यह जो बात मुरारी गुप्त ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हे प्रभु, आपकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। केवल जिस व्यक्ति को आप चुनते हैं, जिस व्यक्ति के हृदय में आप स्फूर्ति देते हैं इस ज्ञान की, वही व्यक्ति केवल आपको जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। इस तरह से मुरारी गुप्ता कहने लगे कि हमारे बस की तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि, हमारे मन, हमारे इंद्रियां जहां तक साथ देती हैं, हम आपका गुणगान करना चाहते हैं। तो इस तरह से इस स्तुति को सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और फिर कहने लगे कि मुरारी गुप्त, तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। और इस समय भगवान ने वराह के रूप में अपने ही वेदों के प्रति रोष या क्रोध प्रकट करा। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि वेद भी तो भगवान की वाणी है। कहा जाता है कि वेद तो भगवान नारायण के साथ है। वेद जो है ये सनातन है, ये शास्त्र जो होते हैं ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। हम देखते हैं कि साधारण जो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं विषय, वो ज्ञान जो होता है वो बदलते रहता है। हम जब छोटे थे, हम जब स्कूल में जाते थे, तो हमारे लिए जो किताबें थी और आजकल जो बच्चे लोग पढ़ते हैं उनमें काफी अंतर है, कितना ज्ञान बदल गया है। लेकिन शास्त्र ऐसे नहीं है। शास्त्र है जो हमेशा सत्य, पहले से भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। वो ज्ञान बदलता नहीं है, ये सच्चा ज्ञान है। ज्ञान मतलब वो ज्ञान जो नहीं बदलता। अगर ज्ञान बदलता हो तो कैसा ज्ञान, फिर हम उनको सीखे क्यों? ये प्रश्न आता है कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति पूछेगा कि आज मैं जो इतना कष्ट लेकर पढ़ रहा हूं और इतनी तपस्या करके मुझे पढ़ाया जा रहा है, कष्ट लेकर मुझे परीक्षा देना पड़ रहा है, ये सब ज्ञान कल ठीक नहीं रहेगा। कल कोई और आके बोलेगा ये गलत है, कोई दूसरा ही सिद्धांत प्रस्तुत करेगा। तो क्यों इतना कष्ट लेना है हमें, जबकि हमें मालूम है कि कल जाके ये बदलेगा, ये गलत सिद्ध होगा कल। तो इस तरह से विद्या के नाम पे अविद्या का प्रचार हो रहा है। भगवान को ज्यादा से ज्यादा हमारे शिक्षा प्रणाली में दूर रखा जा रहा है, इसलिए समाज की ये दशा है। तो वेद शाश्वत है, भगवान की वाणी है, भगवान के आदेश है। फिर भी ऐसे कई लोग हैं जो वेदों को गलत समझते हैं, वेदों के सिद्धांतों का गलत निष्कर्ष निकालते हैं। खास करके वो लोग जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई शरीर नहीं है, ये सब माया का खेल है। तो खास करके ऐसे लोगों की निंदा करने के लिए, ऐसे लोगों की जो सिद्धांत जी किस तरह से गलत है उसको साबित करने के लिए भगवान ने वेदों के ऊपर क्रोध प्रकट किया। तो क्या बोलने लगे भगवान? कहने लगे कि ये जो वेद हैं, ये ऐसी विडंबना करते हैं कि कहते हैं कि मेरे कोई हाथ नहीं है, मेरे कोई पैर नहीं है, मेरे कोई आंखें नहीं है, मेरे कोई इंद्रियां नहीं है। और ऐसे एक व्यक्ति है जो काशी में रहता है, जिसका नाम है प्रकाश आनंद सरस्वती, ये बिल्कुल मेरे अस्तित्व को, मेरे रूप को ही नकार देता है। काशी वो ऐसे लोगों की राजधानी है जो भगवान को निराकार समझते हैं। निराकारवादी या मायावादी लोग वो क्या सोचते हैं कि भगवान का रूप नहीं है। वैसे मूल तो भगवान निराकार है, लेकिन जब अवतार लेते हैं तो फिर रूप धारण करते हैं। अवतार हेतु केवल रूप उनका होता है, नहीं तो मूल तत्व क्या है? निराकार है। और फिर आगे इस सिद्धांत को बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम सब भगवान हैं, केवल निराकार नहीं, हम जितने भी सारे जीव हैं हम सब भगवान हैं। और इस वक्त केवल हम माया के प्रभाव में आ गए हैं। किस तरह से जीव माया के प्रभाव में आ सकता है, इस बात को वो समझा नहीं सकते, इस बात का उत्तर नहीं है उनको। कहते हैं लीला है, लेकिन ये लीला नहीं है। लीला मतलब जो स्वेच्छा से की जाती है, लेकिन हम स्वेच्छा से जन्म नहीं लेते हैं, हम स्वेच्छा से बूढ़े नहीं होते, हम स्वेच्छा से मरते नहीं हैं, हम स्वेच्छा से बीमारी के शिकार नहीं होते हैं, स्वेच्छा से हमारे बिजनेस में नुकसान नहीं कराते हैं। ये हमारे कंट्रोल के नियंत्रण के बाहर है, जबरदस्ती की जा रही है हमारे ऊपर, प्रकृति के नियम हमारे ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं, तो ये तो लीला नहीं कहलाती। लीला वो चीज है जो स्वेच्छा से की जाती है और जिस चीज के ऊपर हमारा पूरा नियंत्रण हो, तब उसे लीला कहते हैं। तो इस तरह से गलत सिद्धांतों का प्रचार हो रहा है। तो काशी में से कई लोग पाए जाते हैं और उनमें से प्रकाश आनंद सरस्वती नाम के एक सन्यासी थे, जो इन सारे मायावादी और निराकारवादी लोगों के प्रमुख थे। चैतन्य चरितामृत में इसका काफी वर्णन आता है कि आगे चलते जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेते हैं और वो वृंदावन की ओर जाते जाते काशी से होकर जाते हैं, तो फिर प्रकाश आनंद सरस्वती को लौटते समय उनका उद्धार करते हैं, क्योंकि प्रकाश आनंद सरस्वती अपने सन्यासियों के बीच में बैठ कर चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते हैं। कहते कि हमने सुना कि बंगाल से कोई वैष्णव आया है, सन्यासी है, बड़ा भावुक है, सन्यासी को चाहिए कि वो तपस्या करे और वेदांत का अध्ययन करे, लेकिन ये सन्यासी वेदांत के अध्ययन को छोड़कर केवल भगवान का नाम लेकर एक भावुक व्यक्ति की तरह सड़क पर नृत्य कर रहा है, ये सन्यासी के लिए उचित नहीं है। तो इस तरह से काफी निंदा कर रहे थे ये सन्यासी लोग चैतन्य महाप्रभु की। महाप्रभु के कानों में पड़ी ये बात, लेकिन ज्यादा उन्होंने परवाह नहीं की, हंस कर वो आगे चले गए वृंदावन। वृंदावन में भगवान कृष्ण के लीला स्थलों का दर्शन किया और वहां से लौट के जब आए, इस समय काशी में थोड़ी देर रुके, क्योंकि महाप्रभु के अवतार लेने का उद्देश्य ये था कि अलग अलग तरह के नास्तिक मायावादी इत्यादि लोगों का भी उद्धार करना, उनको भी कृष्ण भक्ति में लाना। तो फिर उन्होंने वहां संकीर्तन आरंभ किया और प्रकाश आनंद सरस्वती और उनके जो साथी थे उनको उनके ऊपर कृपा बरसाई, उनको भी वैष्णव बना दिया। लेकिन ये जो घटना हुई बहुत बाद में हुई, अभी तो लीला चल रही है, वो महाप्रभु तो चैतन्य महाप्रभु ने अभी अभी भक्ति के लक्षण प्रकट करने आरंभ किए थे और कई साल बीतने थे। उसके बाद वो संन्यास लेने वाले थे, संन्यास लेने के बाद वो आगे काशी जाने वाले थे, लेकिन फिर भी प्रकाश आनंद सरस्वती का नाम तो सारे देश भर में सभी लोग जानते थे, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन वेदों का निचोड़ गलत प्रस्तुत करते थे। तो कहने लगे कि ये जो प्रकाश आनंद सरस्वती है, ये वेदों को पढ़ता है, वेदों का प्रचार करता है, लेकिन मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे रहा है, क्योंकि वो कहता है कि भगवान की कोई इंद्रियां नहीं है, उनके कोई हाथ पैर नहीं, कोई आंखें नहीं इत्यादि। तो वेदों में ऐसा लिखा गया है कि भगवान के हाथ नहीं पैर नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि उनका कोई भौतिक हाथ नहीं, कोई भौतिक शरीर नहीं। श्वेताश्वेता उपनिषद में एक प्रसिद्ध श्लोक आता है, अपान पादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षुः सश्रणोति अकर्णः। इसका मतलब ये है, अपाणि पादो जवनो गृहीता, अपाणि पाद, पाणि मतलब हाथ और पाद मतलब पैर, अपाणि पाद मतलब जिस उनके कोई हाथ पैर न होते हुए भी जवनो गृहीता, जो यज्ञ में जो आहुतियां दी जाती है वो उनको ग्रहण करते हैं। अब कौन व्यक्ति किसी चीज को ग्रहण कर सकता है जब उसके हाथ है ना, उसके हाथ पैर होने चाहिए, नहीं तो ग्रहण कैसे करेगा। तो श्वेता उपनिषद में बताया गया है कि भगवान के हाथ नहीं पैर नहीं, फिर भी वो यज्ञ के आहुतियों को स्वीकार करते हैं। और फिर बताया जाता है पश्यत चक्षुः, उनकी आंख नहीं है फिर भी वो देखते हैं। श्रृणोति अकर्णः, उनके अकर्ण कर्ण नहीं है लेकिन फिर भी सुनते हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? तो जो निराकारवादी लोग हैं वो इस श्लोक से समझते हैं कि इसका मतलब है कि भगवान के कान नहीं, भगवान के आंख नहीं, भगवान के हाथ पैर नहीं, उनका शरीर नहीं, रूप नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो समझते हैं कि इसका मतलब ये है कि उनके कोई भौतिक शरीर नहीं है, कोई भौतिक कान नहीं, भौतिक हाथ नहीं, उनका आध्यात्मिक शरीर है। जगन्नाथ जी के लीला में भी इसी बात की पुष्टि करने के लिए भगवान ने ये विचित्र रूप धारण किया था। हम जगन्नाथ जी का रूप देखते हैं तो इसी श्लोक के ऊपर जोर दिया गया। भगवान कहने लगे, वेद कहते हैं कि मेरे हाथ पैर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी स्वीकार करता हूँ, किस तरह से मैं सिद्ध करना चाहता हूँ। फिर भगवान ने जगन्नाथ का रूप धारण किया है। तो इस तरह से भगवान का रूप है, लेकिन ये रूप एक सच्चिदानंद रूप है जो कि चिन्मय है, आध्यात्मिक है पूरी तरह से, ये भौतिक नहीं है। इस तरह से मुरारी गुप्ता को भगवान ने बताया कि मेरा जो रूप है वो सुंदर है, पूरी तरह से आध्यात्मिक है, और ये जो प्रकाशानंद सरस्वती है जो कहता है कि मेरा रूप नहीं है, उसको कुष्ठ रोग भी हो गया, लेकिन फिर भी वो इस गलत सिद्धांत का प्रचार करना बंद नहीं कर रहा है। मेरे दिव्य शरीर के स्पर्श से मूर्तिमान पवित्रता या पुण्य भी हो जाता, फिर भी ये कहता है कि मेरा कोई शरीर नहीं है, ये मेरा यज्ञ वराह का रूप है। हे मुरारी गुप्ता, अच्छी तरह से जान लो, मैं तुम्हें ये गुही बात बताता हूँ कि मैं ही वही हूँ जो कि वेदों का सार है, और इस समय मैं नाम संकीर्तन के आंदोलन को फैलाने के लिए यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ, और मेरे भक्तों के जो अपराध हैं मैं सहन नहीं कर सकता। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे भक्तों के प्रति अपराध कर रहे हैं, इस बात को मैं सहन नहीं कर सकता। जान लो हे मुरारी गुप्ता कि मेरे लिए मेरे भक्त मुझसे भी ज्यादा प्रिय हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मेरे भक्तों को तकलीफ देता है तो मैं उनको छोड़ता नहीं हूँ। यहाँ तक कि अगर मेरा पुत्र भी मेरे भक्तों को तकलीफ दे, उनके प्रति हिंसा करे, तो मैं उसे भी नहीं छोड़ता। और एक बहुत गुही बात मैं बताता हूँ मुरारी गुप्ता, ध्यान से सुनो कि जब मैंने यही रूप धारण किया था यज्ञ वराह का, और मैंने पृथ्वी को उठाया था गर्भोदक सागर से, तो केवल मेरे स्पर्श मात्र से पृथ्वी देवी गर्भवती हुई थी, और उनका एक पुत्र हुआ था, और वो पुत्र का नाम था नरक। लड़का बड़ा अच्छा था, नेक था, लेकिन आगे चल के गलत संग में चला गया। जब तक वो ठीक था, ब्राह्मणों को, भक्तों को, देवताओं को, उनको अच्छी तरह से आदर पूर्वक उनसे व्यवहार करता था, लेकिन फिर बाणासुर का संग उसे हो गया। बाण नाम का एक असुर था जो शिवजी की उपासना करता था, और शिवजी से वरदान प्राप्त करके फिर सब जगह अत्याचार करने लगा। तो दुर्भाग्य से कि नरक जो थे, जो कि स्वयं भगवान के पुत्र थे, वो इस बाणासुर के संग में आ गए, और फिर भी वो गलत रास्ते पे चले गए और भक्तों के प्रति काफी हिंसा करने लगे। तो फिर भगवान ने कहा मुरारी गुप्ता से कि हालांकि ये नरक मेरा पुत्र था, फिर भी मैंने उसकी हत्या कर दी। ये कथा श्रीमद् भागवत में भी आती है, काफी विस्तार में शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक बार हुआ ये कि जब ये नरकासुर, ये इसका नाम भौमासुर भी है, भौम मतलब भूमि का पुत्र भौम, तो जब भगवान श्री कृष्ण के पास एक बार इंद्र आए स्वर्ग के राजा, और कहने लगे कि ये भौमासुर जो है, जो बाणासुर का मित्र है, ये अब हमारे नाक का दम बन गया है, सब जगह बहुत कष्ट दे रहा है देवताओं को, हमारी माता जो अदिति है उनके कुंडल चोरी कर लिया है, और जो वरुण देव के जो छाता है उनका सिंहासन है वो भी उठा कर ले गया है, और बहुत सारे मूल्यवान चीजें यहाँ स्वर्गलोक से उठा कर ले गया है। तो वे भगवान कृष्ण ने सोचा कि ठीक है, इंद्र भी मेरा भक्त है, और इन भक्तों के प्रति जब भी कोई कष्ट होता है तो मैं यहाँ परित्राणाय साधु नाम में तो भक्तों को राहत देने के लिए आता हूँ। तो फिर वो अपने वाहन गरुड़ देव के ऊपर सवार होकर निकल पड़े। उनके साथ में आए सत्यभामा देवी, उनकी पटरानी द्वारका की। तो निकल पड़े प्राग ज्योतिषपुर की ओर, जो कि नरकासुर या भौमासुर की राजधानी थी। विशाल शहर था, बड़ा किला था, ऊंची ऊंची दीवारें थी उस गांव के रक्षा के लिए, और दीवारों के बाहर भी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से संरक्षण के लिए। बहुत गहरा पानी था और नाना प्रकार के फिर अस्त्र वहाँ थे, सांप थे, बहुत सारी चीजें थी वहाँ रक्षण के लिए। लेकिन भगवान ने केवल अपने गदा से सारे दीवारों को तोड़ दिया और जो भी माया का जाल लगाया हुआ था इत्यादि सब को तोड़ दिया अपने सुदर्शन चक्र से, अपने गदा से। और उस किले के बाहर जो पानी था उसके अंदर एक राक्षस रहता था, एक असुर, जिसका नाम था मुर। उसके पांच स्तर थे और ये भी नरकासुर का मित्र था। अपने मित्र की रक्षा के लिए वहां पर वो इस रूप को धारण किया था उसने। तो जब मुर ने देखा कि कोई आकर ऐसे आक्रमण कर रहा है तो बड़ा क्रोधित होकर वो बाहर आया और भगवान श्री कृष्ण ने आसानी से उसको खत्म कर दिया। इसलिए भगवान का नाम हुआ मुरारी। अरि मतलब शत्रु, तो मुर नाम के असुर का शत्रु, इसलिए भगवान का नाम है मुरारी। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से, अपने गदा से मुर को हरा दिया और उसका वध कर दिया। विस्तार में जो इस लीला को पढ़ना चाहते हैं आप कृष्ण बुक कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम में पढ़ सकते हैं। बड़े सुंदर 4-5 पन्नों की का वर्णन है। और फिर जब ये खत्म हो गया फिर बाहर बड़े क्रोधित होकर वहां पर भौमासुर आया। भौमासुर ने देखा कि अरे ये कृष्ण आए, मेरे पिता आए हैं, आक्रमण कर रहे हैं। तो असुरी प्रवृत्ति ऐसे होती है, सामने कौन है वो नहीं देखता, पिता हो भाई हो कोई हो, जब क्रोध आ जाता है किसी के ऊपर भी आक्रमण कर देता है। तो फिर युद्ध हुआ और भगवान ने भी आसानी से सुदर्शन चक्र से बाणासुर के या भौमासुर के सर जो है वो काट दिया, गर्दन काट दिया। इस तरह से भौमासुर का वध हुआ और ऊपर से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। अब ये नरकासुर भौमासुर इतना दुष्ट आदमी था कि उसने जगह जगह से जो छोटे छोटे राजा थे उनके राज्यों पे आक्रमण किया था और उनके जो भी अविवाहित कन्याएं थीं, पुत्रियां थी, उनका अपहरण कर लिया था। और ऐसे 16,100 तरुणियां थीं जिनको बंद कर दिया था, बंदी रखा हुआ था इनको। तो जब कृष्ण भगवान को पता चला कि ऐसे है तो उनको मुक्त करने के लिए गए। तो तुरंत ये सारी जो कन्याएं थीं हर एक ने अपने अपने मन में ठान ले कि हमें भी श्री कृष्ण से ही विवाह करना है, श्री कृष्ण से अलावा और कोई नहीं चाहिए हमें। और वैसे भी क्योंकि भौमासुर ने उनको पकड़ के वहां लाए थे तो और कोई शायद राजा उनसे विवाह नहीं करता। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि ये भी मेरे भक्त हैं और मेरे शरण में आए हैं, निश्चय आए हैं, तो मुझे ही विवाह करना होगा इनको, नहीं तो और कौन विवाह करेगा, इनका भविष्य क्या होगा। इसलिए भगवान ने 16,100 इन रानियों से विवाह की तैयारी की, उनके लिए अच्छी अच्छी व्यवस्था कर दी, उनको अच्छे कपड़े गहने वगैरह दिए, एक एक के लिए 16,108 रथ तैयार किए और उनको द्वारका भेज दिया। मैं आ रहा हूँ, अभी आया, आप लोग चले जाओ, फिर द्वारका में आऊंगा, वहां धूमधाम से विवाह करेंगे। फिर उनको द्वारका भेजा दिया। और फिर क्योंकि भगवान को काम निपटाना था, इंद्रदेव का कार्य हुआ नहीं था समाप्त, तो फिर उनके राज्य से उन्होंने बहुत सारा धन वगैरह लिया, वो भी द्वारका भेज दिया जो कि उन्हीं का धन है। और उन्होंने अदिति देवी के कुंडल, वरुण देव की छाता इत्यादि सब लिया, गरुड़ के ऊपर रखा और इंद्रदेव के पास चले गए अमरावती में, स्वर्गलोक में। वहां इंद्रदेव को लौटा दिया। तो इस तरह से इंद्रदेव भी खुश हो गए, देवतागण खुश हो गए और ये 16,100 जो कन्याएं थी वो भी खुश हो गई कि उनको पति के रूप में श्री कृष्ण मिल गए, भगवान मिल गए। तो कई बार लोग निंदा करते हैं भगवान कृष्ण की कि इनकी 16108 रानियां हैं, ये कोई बात है। तो इसके जवाब में ये कहा जा सकता है कि यही सबूत है कि ये भगवान है, क्योंकि 16108 महिलाओं से विवाह करना और हर एक को एक एक महल देना, सुंदर बड़ा बड़ा महल, अलग अलग तरह के रत्नों से सुशोभित और हर एक को पूरी तरह से संतुष्ट रखना, ये केवल भगवान ही कर सकते हैं, और कौन कोई साधारण आदमी कर सकता है? तो ये भगवान की लीला है। ये पहले से भगवान के भक्त थे और माधुर्य रस में भगवान की सेवा करना चाहते थे, और ये भगवान के शरण में आए थे, और कोई इनसे विवाह नहीं करता तो उनका सारा भविष्य अंधकार में हुआ होता, लेकिन भगवान ने उनको इस परिस्थिति से बचा दिया। अगर भगवान विवाह न करते तो उनका क्या होता? तो इस कहानी से हम ये बात समझ सकते हैं कि भगवान ने ये नहीं सोचा कि ये मेरा लड़का है, मेरा बेटा है, ये तो मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, हालांकि वो अत्याचार कर रहा है तो बात को दबा देना चाहिए और फिर आगे चलना चाहिए, जैसे हम आजकल बहुत देखते हैं, आजकल खास करके जो राजनीति के क्षेत्र में हम देखते हैं, बराबर है ना, लोग उनके लड़के जो होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, उनके लड़के कोई ऐसे गलत काम करते हैं और फिर जब बात अखबार में छपती है, कुछ होता है तो कुछ न कुछ करके तो बात को दबा डालते हैं, आखिर मेरा बेटा है, दबा के रख देते हैं, और बेटा जैसे पहले कर रहा था वैसे करने लगता है, जैसे पिता वैसे बेटा, तो दोनों सब चलता रहता है अभी यहाँ आजकल समाज में। तो पहले के राजा ऐसे नहीं हुआ करते थे। हम देखते हैं कि महाराज अंग, उनका बेटा भी बड़ा दुष्ट था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये बेटा मेरा दुष्ट हो गया है तो उसको राज्य से बाहर निकाल दिया। इसकी चाहे नहीं, असली राजा तो ऐसे होना चाहिए। अगर अपना भी बेटा क्यों ना हो, अगर वो दुष्ट निकले तो उसको दंड देना चाहिए। अगर वो मोह में पड़ जाएगा, नहीं नहीं मेरा बेटा है, कैसे इसको दंड दे सकता हूँ, तो उसको पाप लगेगा और सारे प्रजा का जो श्राप है वो उसके ऊपर लग जाएगा। तो इसका मतलब हमारे दैनिक जीवन में भी हमें देखना है कि भले हमारे से हमसे कोई करीब भी कोई व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसे दंडित होना चाहिए, दंड देना चाहिए उसे। वो उस व्यक्ति के भलाई के लिए भी है और हमारे भलाई के लिए भी और सारे समाज और कुटुंब के भलाई के लिए भी है। तो इस तरह से भगवान ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही मुरारी गुप्त से कि मेरे भक्त मेरे लिए इतने प्रिय हैं कि अगर मेरा बेटा भी भक्तों के खिलाफ कोई कार्य करे तो मेरे बेटे को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से भगवान ने ऐसे सुंदर उपदेश दिए मुरारी गुप्त को, और फिर भगवान फिर से अपने निमाय पंडित के रूप में प्रकट हुए। उधर मुरारी गुप्त प्रार्थना अर्चन करने लगे, और इसी तरह से निमाय पंडित अपने हर एक भक्त के घर में जाते और कोई न कोई रूप उनको दर्शाते, विशेष रूप, ताकि सभी भक्तों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए कि ये जो निमाय पंडित है ये स्वयं भगवान है। हालांकि पब्लिक में जाके, बाहर जनता के सामने जाके वो ऐसा नहीं करते थे, लेकिन जो अपने निकट के भक्त थे उनके घर घर में जाके वो ऐसे करते थे, और इस तरह से सारे भक्तों को पता चल गया कि हमारे बीच में भगवान प्रकट हुए हैं। तो बड़े आनंद से फिर वो भगवान के संग में रहकर, महाप्रभु के संग में रहकर कीर्तन में शामिल होने लगे। अब आपको याद होगा कल की चर्चा से कि अद्वैत आचार्य भगवान की परीक्षा लेने के लिए शांतिपुर चले गए थे, नवद्वीप से दूर चले गए थे। वो अपने मन में सोच रहे थे कि वास्तव में अगर ये हमारे प्रभु है और मैं उनका सेवक हूँ तो प्रभु को चाहिए कि वो सेवक को बांध के रखे, तो मुझे बुला लेना चाहिए उन्होंने वापस। तो एक बार निमाय पंडित ने श्रीवास पंडित के सबसे छोटे भाई रमाई पंडित से कहा कि जाओ अद्वैत आचार्य को बुला के ले आओ, उसे कहो कि वो जानबूझकर क्यों शांतिपुर मुझसे छुपकर चला गया है, वो मेरी परीक्षा लेना चाहता है, हालांकि वो मेरी महिमा को जानता है। तो जाओ अद्वैत आचार्य से कहो कि जिस कारण तुमने इतना उपवास किया था, इतनी आराधना की थी, इतने व्रतों का पालन किया था, वो कारण अभी तुम्हारे सामने प्रकट है, वो पूर्ण हो गया है, तुम्हारे सारे तपस्या की सफलता भी प्राप्त हो गई है। वही आराध्य देव यहाँ पर आए हुए हैं, तो जल्दी से यहाँ चले आओ। और ये भी बताओ कि साथ साथ में नित्यानंद प्रभु भी यहाँ पर आ चुके हैं नवद्वीप में, और उन्हें कहो कि तुरंत यहाँ आए और मेरी आराधना करें, मेरी उपासना करें। तो रमय पंडित ने भगवान का स्मरण किया, तुरंत जल्दी जल्दी शांतिपुर की ओर निकल पड़े। उस समय अद्वैत आचार्य समझ गए अपने मन ही मन में कि भगवान का आदेश आ गया है, और फिर उन्होंने पूछा रमय पंडित से कि बताओ बात क्या है, क्या संदेश लाए हो मुझसे, किसने कहा है कि भगवान नदिया में नवद्वीप पर प्रकट होने वाले हैं, कौन से शास्त्र में ऐसे बताया है। जानबूझकर ऐसे अद्वैत आचार्य बोल रहे थे। रमय पंडित हंसने लगे, कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि अद्वैत आचार्य कौन है और उनकी श्रद्धा क्या है। और फिर अद्वैत आचार्य कहने लगे कि वास्तव में अगर भगवान प्रकट हुए हैं तो फिर उनको अपनी शक्ति दिखानी चाहिए, अपने चरण कमल मेरे सर के ऊपर रखना चाहिए। तो रामायण ने कहा कि अगर मेरा भाग्य होगा तो मैं ऋषि को देखूंगा। तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि बोलो रामायण, क्या संदेश लाए हो मेरे लिए। फिर रामायण पंडित ने कहा कि निमाय पंडित से मैं आया हूँ, प्रभु ने संदेश भेजा है कि आपकी तपस्या, आपके संकल्प जो है वो भी सफल हो गए, लौट के आ जाओ और पूजा की सामग्री साथ में लेकर आना, और साथ में नित्यानंद प्रभु भी आए हैं। तो अद्वैत आचार्य इस बात को सुना, प्रेमावेश में आकर वो नृत्य करने लगे, हुंकार करने लगे, और वो और उनकी पत्नी दोनों बहुत खुश हो गए, और पूजा की सामग्री इत्यादि एकत्र करके वो निकल पड़े नवद्वीप की ओर। लेकिन उन्होंने रमण पंडित से कहा कि प्रभु से ये मत कहना कि मैं आया हूँ, कहना कि मैं नहीं आया, मैं जाकर नंदन आचार्य के घर में छुप जाऊंगा, तुम बताना मत प्रभु को कि मैं आ गया हूँ। तो फिर रमण पंडित ने कहा ठीक है, वो चले गए वापस। उधर महाप्रभु को पता चल गया कि अद्वैत आचार्य और अमर पंडित के बीच में क्या बीता है, आखिर वो अंतर्यामी है, सबके हृदय में विराजमान है। तो फिर उन्होंने सारे भक्तों से कहा कि अद्वैत मेरी परीक्षा लेना चाहता है, हालांकि मुझे अच्छी तरह से जानता है फिर भी मेरी परीक्षा लेना चाहता है, तो ठीक है। तो वो फिर वो श्रीवास पंडित के घर में गए, सभी लोग वहां पर एकत्र हुए। श्रीवास पंडित के घर में महाप्रभु मिलकर कीर्तन किया करते थे, ये कीर्तन रात भर चलते थे। और जब वहां आए तो उन्होंने अपना ऐश्वर्य सारे भक्तों को प्रकट कराया। उस ऐश्वर्य में प्रकट करते करते सारे भक्त अपने अपने शक्ति बुद्धि पात्रता के अनुसार प्रार्थना अर्पण कर रहे थे, कोई अलग अलग तरह की सेवा अर्पण कर रहे थे महाप्रभु को। और उस समय रमाय पंडित वहां पर चले आए। रमाय पंडित का एक शब्द कहने के पहले महाप्रभु ने उनसे कहा, अद्वैत आचार्य नंदन आचार्य के घर में है ना, जल्दी से उनको बुलाओ, मैं राह देख रहा हूं उनकी, जल्दी से मैं उनकी पूजा स्वीकार करना चाहता हूं। तो फिर जल्दी से रमाय पंडित वहां गए और अद्वैत आचार्य को बताया नंदन आचार्य के घर में। तो जल्दी से आनंदित होकर अद्वैत आचार्य उनकी पत्नी सीता देवी जल्दी से आ गई, और वहां पर अद्वैत आचार्य को निमाय पंडित ने महाप्रभु ने अपना षड्भुज रूप दिखाया, छह भुजाओं का रूप, दो भुजाएं सन्यासी के इसमें कमंडलू और डंडा, दो भुजाओं में बांसुरी बजाने वाले कृष्ण, और दो में धनुष बाण प्रभु रामचंद्र का। और षड्भुज रूप दिखाकर अद्वैत आचार्य बड़े प्रभावित हुए, दंडवत प्रणाम किया उन्होंने और अद्वैत आचार्य से कहा कि मेरी प्रार्थना करो, मेरी पूजा करो। और भगवान के सुंदर रूप को देखकर अद्वैत आचार्य ने उनकी पूजा करना आरंभ किया। सबसे पहले शीतल जल से उनको चरणों को धोया, फिर चंदन लगाया, लेप लगाया, तुलसी मंजरी अर्पित की। इस तरह से सेवा करते करते सारी पूजा अर्चा उन्होंने समाप्त की और फिर स्तुति करना आरंभ किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और फिर भगवान ने उनसे कहा कि हे अद्वैत, अभी आप कीर्तन करो, नृत्य करो। अद्वैत आचार्य ने बड़े हृदय से धूमधाम से कीर्तन किया, नृत्य किया और फिर भगवान ने उनको रोकने के लिए कहा और कहा कि आशीर्वाद मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। तो अद्वैत आचार्य ने कहा, आप मुझे क्या चाहिए, आपका दर्शन हुआ, मैंने आपको बुलाया और आप वैकुंठ से यहाँ चले आए, अब मुझे और क्या चाहिए, मेरी इच्छा पूर्ण हो गई है। तो महाप्रभु ने कहा कि एक बार जान लो कि मैं आराम से क्षीर सागर में बैठा था वैकुंठ में, तुम्हारी जोर जोर से जो पुकार मैंने सुनी, तो मेरा काम मुझे छोड़ के यहाँ आना पड़ा। तो मैं आया हूँ केवल तुम्हारी पुकार को सुनकर, मैं यहाँ आया हूँ और ये जान लो कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। मैं घर घर में जाके नाम संकीर्तन का प्रचार करूंगा, सबको मैं श्री कृष्ण के भक्ति में डुबा डालूंगा। अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की कि नीच से नीच लोगों को भी भक्ति मिलनी चाहिए, मेरी प्रार्थना है, चाहे वो चंडाल के परिवार का क्यों ना हो, घर घर में सभी को मिलना चाहिए, स्त्रियों को मिलना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए, बूढ़ों को मिलना चाहिए, चांडालों को मिलना चाहिए, बुद्धिमान लोगों को मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। लेकिन केवल वो लोग हैं जो घमंड से आपके पास नहीं आते हैं, जिनके मन में अपने धन, अपने बुद्धि, अपने ऊंचे कुल इत्यादि के बारे में ज्यादा घमंड है, उनको जल जाने दीजिए उनके घमंड के अग्नि में, उनकी परवाह मत कीजिए। लेकिन अन्य जो भी है, जितने भी नीच कुल के क्यों न हो, उनको आप भक्ति प्रदान कर दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी अद्वैत। और इसके बाद नवद्वीप में देखा गया कि तरह तरह के लोग सारे उन प्रांतों में वो कृष्ण भक्ति में विलीन हो गए। यहाँ तक कि वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जितने भी चांडाल भी थे, नीच से नीच पुल में जन्म लेने वाले, जो कुत्ते का मांस भी खाया करते थे, इस तरह के लोग वो भी कृष्ण भक्ति में, कृष्ण कीर्तन में झूमने लगे भाग भोर होकर। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, थोड़े जो भट्टाचार्य, मिश्र और चक्रवर्ती थे, मतलब जो ऊंचे ब्राह्मण कुल के लोग, कई लोग, वो निंदा करते रह गए, वो भक्ति में नहीं आए। आजकल कलयुग में ये देखा जाता है कि कई ऐसे पापी से पापी लोग हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। कलयुग में ये दशा हो गई है, ब्राह्मण भी ब्राह्मण नहीं रहे, केवल नाम के ब्राह्मण है, जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता, तथा कथित ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं कहलाता, ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। वराह पुराण में बताया जाता है, भविष्यवाणी की है कि जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में होगा। ऐसा नहीं कि हर एक ब्राह्मण परिवार में ऐसा है, लेकिन ऐसे कई राक्षस प्रवृत्ति के लोग अलग अलग ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। तो आजकल ब्राह्मण परिवार में सब चलता है, कई ऐसे ब्राह्मण परिवार में हमने भी देखा है जहाँ शराब भी चलता है, मांसाहार भी चलता है, ये सब हो रहा है। बल्कि एक भक्त हमें बता रहे थे कि एक व्यक्ति थे उसके पिताजी के दोस्त, जो कि बड़े मांसाहारी थे, और ये जो भक्त हैं वो ब्राह्मण परिवार के हैं, तो उनके पिताजी के दोस्त उनके पिताजी से मजाक कर रहे थे, अरे आजकल तो सब मांस की कीमत बाजार में बढ़ गई है, क्यों आप सब लोग आजकल खा रहे हो ना, सब ब्राह्मण लोग आने शुरू हो गए तो सब बाजार में कीमत बढ़ गई। वो मजाक तो कर रहे थे, लेकिन इस बात में थोड़ा बहुत सत्य भी है कि आजकल ब्राह्मण लोग ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जो बिल्कुल उनके लिए करना उचित नहीं है। तो महाप्रभु के समय जो ऐसे तथाकथित ब्राह्मण परिवार के लोग थे, जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे, जिनके हृदय में बहुत घमंड था, उन्होंने कृष्ण भक्ति के मार्ग को स्वीकार नहीं किया। हम साधारण लोगों के बीच में रहकर नाम संकीर्तन करें? नहीं, हम तो ऊंचे कुल के हैं, हम तो अकेले बैठकर हमारी पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, हम तो बड़े पुण्यवान हैं, हम सारे रीति रिवाज जानते हैं, मंत्र तंत्र में विशारद हैं, हमें ये सब साधारण लोगों में जाके मिलना जुलना, ये क्या भक्ति भावुक होकर करना, ये सब नहीं। इसलिए देखा गया कि ऐसे घमंडी लोग भक्ति में नहीं आ पाए, लेकिन जो साधारण लोग थे उनके जीवन की सफलता हो गई। जीवन की सफलता ये है कि हम कृष्ण भक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम में लौट कर चले जाएं। इस तरह से अद्वैत आचार्य की इच्छा पूर्ण हो गई। वैसे महाप्रभु की यह कृपा है कि उन्होंने इस संकीर्तन के आंदोलन को जगह जगह पहुंचा दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि अयोग्य है इसके लिए, लेकिन हम देखते हैं कि धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो योग्यता अयोग्यता की दृष्टि सभी लोग करते हैं। ये मेरे जाति का है, ये मेरा धर्म जो है केवल मेरे जाति के लिए है, या केवल ये जिन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लिया है उनके लिए है। लेकिन महाप्रभु के आंदोलन में ऐसा कुछ नहीं है। महाप्रभु का आंदोलन वास्तव में सारे विश्व का धर्म है। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मैं एक ऐसा घर बनाना चाहता हूँ जिसमें सारी दुनिया रह सके। वसुधैव कुटुम्बकम, ये वास्तव का वसुधैव कुटुम्बकम है, जिसमें सारे पृथ्वी के लोग, सारे प्राणी भी केवल भगवान कृष्ण को अपने आराध्य देव मानकर भक्ति करके चलते रहे। इस तरह से वहाँ श्रीवास पंडित के घर में अद्वैत आचार्य के ऊपर बहुत कृपा की, उनको अपना षड्भुज रूप दिखाया, फिर वहाँ पर बहुत लंबे समय तक कीर्तन चलते रहा, और इसी तरह से निमाय पंडित अपने भक्तों के साथ में नवद्वीप में कीर्तन करते रहे। कल सुबह हम एक बहुत महान भक्त के बारे में चर्चा करेंगे, पुंडरीक विद्यानिधि, जो कि नवद्वीप में बस आने ही वाले थे, और चैतन्य महाप्रभु उनका नाम पुकारते रहे और भक्तों को पता नहीं चला कि ये कौन है ये पुंडरीक। तो पुंडरीक कौन थे और उनकी महिमा क्या है और किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उनकी महिमा को प्रकाशित करने के लिए योजना की, तो ये हम कल सुबह को सुनेंगे। श्री गौरांग महाप्रभु की जाए, श्री गौर लीला की जाए। तो आपके कोई प्रश्न इत्यादि है तो आप पूछ सकते हैं। सोच लेते ये कोई प्रश्न पूछ लेंगे। वैसे भगवान के लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। भगवान तो सभी जगह प्रकट हो सकते हैं, किसी भी समय में प्रकट हो सकते हैं। अगर सुखदेव गोस्वामी अपनी माँ के घर में 16 साल रह सकते हैं, बाहर आने के लिए तैयारी नहीं थे, वो कहते थे मैं बाहर आके माया में पढ़ूंगा, संसार में पड़ जाऊंगा, मुझे केवल भगवान का भजन करना है, फिर वेदव्यास जी के कहने पर भी नहीं आए बाहर। वेदव्यास जी को जाना पड़ा द्वारका, श्री कृष्ण से निवेदन करना पड़ा, आप ही आइए, आप ही समझाइए मेरे बेटे को, ये कोई बात है 16 साल माँ के घर में रहना, बाहर तो आना चाहिए कि नहीं उसे। तो भगवान कृष्ण ने जाकर गारंटी दी, भाई मैं गारंटी देता हूँ, चाहिए तो लिख कर देता हूँ कि तुम माया में नहीं पढ़ोगे, बाहर आ जाओ। फिर जाकर सुखदेव गोस्वामी बाहर चले आए। तो जब ये सब संभव है तो भगवान के लिए ऐसे करना असंभव नहीं है। तो हालांकि स्पर्श काफी समय पहले हुआ, लेकिन जन्म द्वापर के अंत में हुआ। ये सत्ययुग की बात थी जो वराह देव ने उनका स्पर्श किया था। लेकिन जन्म बाद में होना इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान की लीला में सब कुछ अचिंत्य है। हम हमारे भौगोलिक और भौतिक दृष्टि से, साधारण दृष्टि से, हमारे अनुभव की दृष्टि से देखेंगे तो हमारा मन शायद भ्रमित हो सकता है, लेकिन भगवान की लीला में ये शब्द महत्वपूर्ण है, अचिंत्य। अचिंत्य मतलब जो हमारे चिंतन के बाहर है। अगर हम इस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको समझेंगे नहीं, तो भगवान और उनकी लीलाओं को हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। भगवान के लिए काल और जगह है, ये कोई सीमा नहीं है, हमारे लिए सीमा है। हमें लगता है कि इतना अंतर है समय में, हजारों सालों का, लाखों सालों का अंतर है, लेकिन भगवान के लिए समय, जगह है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान के लिए भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ये हमारे लिए अंतर लगता है, लेकिन भगवान के लिए नहीं। भूत क्या, भविष्य क्या, वर्तमान क्या, एक ही भगवान के। और कोई प्रश्न? ऐसी षडभुज रूप सार्वभौम भट्टाचार्य को भी कराया था? हाँ, वो भी बाद में कराया था, संन्यास के बाद, जब महाप्रभु ने संन्यास लिया था और फिर वो जगन्नाथपुरी में चले गए। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त नहीं थे, फिर उनको भक्त बनाया महाप्रभु ने, और फिर भक्त बनाने के बाद एक दिन उनको षडभुज रूप का दर्शन कराया। तो ये भागवत में है। कल से हम जो भी लीलाएं बताते आ रहे हैं, पिछले साल में भी, दो साल में, ज्यादा से ज्यादा चैतन्य भागवत से बताते आए हैं। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर ने यह ग्रंथ पहले लिखा था, और फिर हमने नारायणी का वर्णन किया ना, वो बालक नारायणी बच्चे, वृंदावन दास ठाकुर उनके लड़के थे। आगे चलिए, तो वृंदावन दास ठाकुर ने पहले लिखा था ये वर्णन, ज्यादा से ज्यादा उनके तरुण अवस्था तक जो भी लीलाएं हैं। और जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखी, उन्होंने अपने ग्रंथ में कई बार कहा कि इन लीलाओं को विस्तार में वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में पहले से कह दिया है, तो मैं उनको ज्यादा दोहराऊंगा नहीं, मैं केवल संक्षेप में लिखूंगा। इसलिए ज्यादा जोर चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनके संन्यास के बाद में जो लीलाएं हुई हैं उनके ऊपर ज्यादा जोर दिया, क्योंकि जो उनकी आदि लीला है उनका ज्यादा से ज्यादा वर्णन चैतन्य भागवत में आता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा, दोबारा क्यों दोहराना चाहिए इन लीलाओं को, जबकि वृंदावन दास ठाकुर ने पहले से किया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं और उनकी जो किशोर लीलाएं हैं उन्होंने केवल संक्षेप में बताया, ज्यादा विस्तार में चैतन्य भागवत में पढ़ने में आते हैं। प्रश्न ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों के घर में जाकर उनको अपने रूप दिखाए और उनकी श्रद्धा बढ़ाई, तो बेलगाम के भक्त को क्यों नहीं करते है? करते हैं ना, पहले तो यहाँ पर आए हैं, गोविंद तो यहाँ भी है ना, खड़े हैं ना यहाँ पर, हमारे लिए खड़े हैं शांति से, हाथ ऊपर करके खड़े हैं, आओ आओ आओ, कितने धीरज रखते हैं भगवान। लेकिन हम किसी की प्रतीक्षा करें, आपको किसी, हम किसी को टाइम दिया है, हम वहाँ आपको बोगर में से मिलेंगे ठीक 10:30 बजे, हम पहुँच गए 10:30 बजे, 11:15 बजे, 11:00 बजे, 11:30 बजे, 12:00 बजे हम खड़े हैं, कब तक खड़े रहेंगे, परेशान होकर निकल जाएंगे ना। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, खड़े हैं, खड़े हैं, आएगा मेरा भक्त, आएगा आएगा आएगा, और भक्त कहता है हाँ प्रभु जी कल आऊंगा, कल आऊंगा, कल आऊंगा, अभी थोड़ा काम है, अभी और थोड़ा मेरा कर्तव्य है, अभी संसार है थोड़ा बहुत, अभी और कुछ है। वो जैसे कि कैलाश की कथा है, जानते हैं ना कैलाश की कथा, कैलाश की कथा थोड़ा सुनाते हैं संक्षेप में। एक बार एक आदमी था जिसका नाम था कैलाश, तो नारद मुनि उनके पास आए, अरे कैलाश चलो भगवान की भक्ति करना चाहिए तुम्हें, तो जीवन का उद्देश्य है तुम इतने अपने संसार में लगे हुए हो, दिन रात अपना संसार संसार संसार, कुछ भगवान का भजन भी तो करो कुछ। हाँ नारद मुनि जी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है कि अभी तक मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरा व्यवसाय है, मेरा घर है, मुझे सब कुछ संभालना है, सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है, तो मुझे करना पड़ेगा। तो जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। तो ठीक है, तो नारद मुनि देखा बच्चे बड़े हो गए, फिर से दोबारा गए कैलाश, बच्चे बड़े हो गए, बिजनेस संभाल रहे हैं, अब चलो। अरे हाँ संभाल तो रहे हैं, लेकिन क्या है कि अभी उनके छोटे बच्चे हुए हैं, तो उनको मेरे बच्चों को सिखाना चाहिए कि उनके बच्चों का देखभाल कैसे करना चाहिए। अगर मैं नहीं सिखाऊंगा तो फिर कौन सिखाएगा उनको? और वैसे भी घर में बुजुर्ग नहीं रहे तो क्या है, युवा पीढ़ी इधर उधर जाती है, अच्छी बात नहीं है। कहा ठीक है, क्या किया जाए। तो एक दिन नारद मुनि सोचे कि अभी ठीक है, अभी बुढ़ापा हो गया फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो एक बार फिर से आए। जब आए तो कैलाश को कहीं नहीं देखा, तो उनके लड़के भी काफी बड़े हो गए थे, तो उनको पूछा कि कहाँ है तुम्हारे पिताजी? नहीं, मेरे पिताजी का तो देहांत हो गया। अरे रे रे, तो नॉर्मल सच ले गए, देखो मैंने इतने चांस दिए थे तो चांस का। तो निराश होकर नारद मुनि जा रहे थे कि अचानक उन्होंने सुना, नारद मुनि जी मैं यहाँ हूँ। कहा से आवाज आया नारद? ये तो वहां कुत्ता था। अरे क्या बात है, तुम कौन हो? मैं ही कैलाश हूँ, अभी मुझे कुत्ते का जन्म मिला। कुत्ते का जन्म मिला? अरे अब तो चलो, अब तो भगवान का भजन करो। नहीं नहीं नहीं, मेरे परिवार का रक्षण करना है मुझे, जो भी चोर आता है या आता है वो करके मैं उनको दूर रखता हूँ। आखिर मेरी पिछले जन्म के परिवार थे ना, ये तो भोले भाले हैं, कुछ समझते नहीं है, ताला भी नहीं लगाते जाते, तो मुझे रहना पड़ता है यहाँ, तो मैं यहाँ इनके संरक्षण के लिए खड़ा हूँ। ठीक तो है भाई, क्या किया जाए। तो इस तरह से टाइम बीत गया। और फिर अगली बार जब आए, कुत्ता भी मर गया था, और इस बार वो सांप बन गए थे। और फिर सांप बनने के बाद जब वो कुत्ते को देख रहे हैं, कुत्ता भी मर गया, फिर वो निराश होकर जा रहे थे, तो नारद मुनि आइए कहाँ है? अभी सांप से आवाज आ रही है, तो मैं सांप बन गया इस जन्म में। अच्छा अब तो चलो। नहीं नहीं नहीं, क्या है ना कि यहाँ बहुत खतरा है, मुझे यहाँ अभी तक रहना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए इसके बारे में। तो उन्होंने बच्चों को जाके बताया, लड़कों को, अरे आपको पता है कि आपके आंगन में सांप है? सांप? तो सब लेकर लाठी वाठी लेकर और सांप को मार के चूर चूर कर दिया, खत्म कर दिया। तो नारद मुनि ने कहा यही एक रास्ता था, क्या करें। तो ये कैलाश की कथा है, सबकी इंतजार करते रहते हैं। चंद्रमौली महाराज बता रहे थे, उन्होंने भी ये कथा एक बार सुना, ये बहुत प्रसिद्ध कथा है इस्कॉन में, कैलाश की कथा। तो वो भी कथा को सुना रहे थे जब वो आए थे यहाँ पे। वो बता रहे थे कि एक बार जब वो कहानी बता रहे थे किसी सत्संग में, तो उसके बाद में एक व्यक्ति उनके पास आया और कहने लगा, स्वामी जी मेरा नाम कैलाश है। तो चंद्रमौली महाराज उनको बताया कि नहीं, आपके बारे में खास हम नहीं बोल रहे थे, लेकिन एक कहानी है। लेकिन वो कहने लगा, हाँ मैं समझ गया कि मैं भी उसी परिस्थिति में हूँ। तो ऐसे है, तो भगवान इंतजार कर रहे हैं हमारे लिए। देखिए चैतन्य महाप्रभु हाथ ऊपर करके खड़े हैं, राधा गोकुला में कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए खड़े हमारे लिए, आएंगे आएंगे आएंगे। हम बोलते हर बार आऊंगा, जस्ट नॉट कमिंग, अभी आऊंगा अभी आऊंगा, बस ये खत्म करके आऊंगा, बस वो काम है वो खत्म करके आऊंगा, कल से शुरू करूंगा, परसों से शुरू करूंगा, ये हो जाएगा फिर आऊंगा, वो हो जाएगा आऊंगा, कभी नहीं होता। फिर मृत्यु आ जाती है, फिर पुनर्जन्म, फिर पुनर्जन्म, 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 पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, वही चलता रहता है। इसलिए भगवान इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, और वो कह रहे हैं चलो हमारे आपको आपके घर, मुझे तुम्हारे घर में जाना है। भगवान हम सबको बोल रहे हैं, मैं यहाँ मंदिर में तो आया हूँ, मुझे तुम्हारे घर में ले आओ। शिशु गौ निताय की जाए, शिशु राधा गोकुल आनंद की जाए।
तो हर एक घर में गौर मित्र विराजमान होने चाहिए, गौर मित्र की सेवा हर एक घर में होनी चाहिए। भगवान परम सत्य है, इसलिए उनके विग्रह के रूप में और उनमें उनके नाम में कोई अंतर नहीं। तो अगर चैतन्य महापुरुष जाकर हर एक घर में अपना दिव्य रूप दिखाते करते थे तो हमारे घर में भी आ सकते हैं अगर हम बुलाए तो उनको, अगर हम नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। तो कैसे बुलाना चाहिए उनको? पहली बात, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर रोज नाम संकीर्तन करना हर एक परिवार में होना चाहिए। कम से कम दिन में एक बार मिलकर कीर्तन करना चाहिए और गीता भागवत से थोड़ा पाठ करना चाहिए और घर के सदस्यों को भगवान के विग्रह की सेवा में लगाना चाहिए, खास करके गौर निताई चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को, क्योंकि राधा कृष्ण की सेवा में कई अपराध वगैरह के विचार आते हैं और नियम काफी कड़क होते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु हैं। हमसे गलती भी हो जाती है पूजा अर्चना में तो स्वीकार करते हैं, माफ कर देते हैं। कलयुग के अवतार है, कलयुग के लोगों के स्तर को जानते हैं, इसलिए गौर निताई को हमें घर में स्वीकार करना चाहिए, बुलाना चाहिए, स्वागत करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, कीर्तन होना चाहिए घर में, फिर भगवान का साक्षात्कार हर एक घर में हो जाएगा। भगवान तो आने के लिए तैयार हैं, बुलावा होना चाहिए हमसे, हम उनको बोलना चाहिए आप आइए। भगवान कहते मैं तैयार हूँ, बोलो कौन बुलाने के लिए तैयार है, मैं तो अभी भी आने के लिए तैयार हूँ। तो हम भगवान को बुलाएंगे, भगवान आएंगे हमारे घर में, हर एक व्यक्ति के घर में आएंगे। हाँ जी, तो है कि राधा कृष्ण की सेवा में अपराध करना अच्छा नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके साथ भी अपराध करना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर अनायास हो भी जाए हमारी अज्ञानता की वजह से तो फिर भी वो क्षमा कर देते हैं। प्रश्न ये है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के बारे में क्या है? वो भी वैसे ही कृपालु है गौर निताई की तरह, लेकिन उतने नहीं, लेकिन है, बहुत कृपालु है, उनकी भी सेवा हम कर सकते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। लेकिन अति कृपालु नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर खुशी नमः। नमो महावदान्याय अवतार, अति कृपालु महाकृपालु अवतार है भगवान के चैतन्य महाप्रभु, इसे खास करके इनकी सेवा में करने चाहिए। हाँ जी, कि भगवान के बाल रूप को इनकी पूजा में ज्यादा अपराध का सवाल नहीं आता है। कई हद तक जो आप बोल रहे हैं सही बात है, लड्डू गोपाल जी बड़े कृपालु हैं, उनको लड्डू गोपाल कहते हैं, जो हाथ में लड्डू लिए रहते हैं, वो लड्डू खाना पसंद करते, लड्डू नहीं वैसे माखन लेकर चलते हैं, लेकिन फिर भी कलयुग के पतित पावन अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु। हम डायरेक्ट कृष्ण भगवान के पास नहीं जा सकते हैं, इस युग में चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से हमें जाना होगा, क्योंकि कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, कृष्ण भक्ति क्या है, वो चैतन्य महाप्रभु सिखलाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बिना इस कलयुग में जीवन की संसिद्धि को प्राप्त करना असंभव है, इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपने जीवन में लाना ही चाहिए। प्रश्न यह है कि आदमी को पिछला जन्म याद नहीं रहता तो कैलाश को याद रह गया पिछले दो जन्म, इसका मतलब है कि पिछले जन्म को याद रहना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई पुण्य की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए हम भी आतुर रहे। अगर याद रहे तो ठीक है, ऐसे कई लोग हैं, हम भी जानते हैं एक दो चार लोगों को जो अपने पिछले जन्म को याद करते हैं, लेकिन इससे कोई खास बात नहीं है, ये कोई भक्ति का लक्षण नहीं है, कोई विशेष कर्म की वजह से उनको पिछले जन्म का स्मरण आता है, थोड़े पापी लोगों को भी जन्म पिछले जन्म का स्मरण आता है और थोड़े पुण्यवान लोगों को नहीं आता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे कई लोग होते हैं जिनको पिछले जन्म का स्मरण भगवान की कृपा से आता है, लेकिन हमें कोई जिज्ञासा की भावना नहीं रखनी चाहिए। कई लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, ये भृगु संहिता पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, भविष्य में हमारा कौन सा जन्म होगा, पिछले जन्म में हम कौन थे, ये सब जानकारी लाने के लिए क्या फायदा है? अगर हमें पता भी चला कि मैं पिछले जन्म में राजा था मैं प्रधानमंत्री था, मैं पिछले जन्म में जवाहरलाल नेहरू था, क्या फायदा हो गया, केवल शोक करके बैठूंगा, आया क्या था और अब क्या हो गया, है ना, क्या फायदा हमें पता चल गया। इसलिए हमें भूतकाल में जो हुआ तो हुआ, उसको भूल जाना है। बहुत गलतियां कर ली है इतने जन्मों में, अभी तो अपने को सुधार लेना है, अपने को कृष्ण के शरण में जाना है और अपने अगले जन्म इस भौतिक जगत में नहीं होना है, ये हमको ठान लेना है। हमको भगवान के धाम में जाना है वापस, और साथ साथ जितने लोग हो सके उनको साथ में लेकर जाना है, ये निर्णय लेके हमें रहना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि अद्वैत आचार्य ने पूछा था कि आप नीच चंडाल वगैरह जाति के भी लोगों को आप उद्धार कर लो, लेकिन जो घमंडी है उनको रहने दो, तो ऐसा कि उनके प्रति भी क्यों नहीं किया। एक दृष्टि से देखा जाए तो किया महाप्रभु ने, महाप्रभु ने किसी को छोड़ा नहीं, मायावादियों को भी जो कि परम अपराधी है, परम घमंडी है, उनको भी नहीं छोड़ा। काशी के सारे लोग, काशी को भी वैकुंठ बना दिया उन्होंने, और हरिदास ठाकुर के साथ जब संवाद हुआ तो उसमें हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर ने खुद अपने महाप्रभु को बताया कि आपने तो सारे ब्रह्मांड का उद्धार कर दिया, न केवल उस शहर का। तो चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया, परंतु केवल एक पॉइंट बनाने जा रहे हैं अद्वैत आचार्य कि भक्ति सबके लिए है, इसमें कोई जाति भेद नहीं, देश भेद, जन्म धर्म भेद, कुछ भेद नहीं, लेकिन इसमें अगर एक योग्यता चाहिए तो वो है कि हमारे घमंड को हमें त्यागना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है, घमंड है अपने ऊंचे कुल के प्रति, अपने धन के प्रति, अपने सौंदर्य बुद्धि शिक्षण के प्रति, वो कभी भी भगवान के शरण में नहीं आ सकता है। कुंती महारानी भी श्रीमद् भागवत में बताती है, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिर एधमान मद कुमान नैवार्हति अभिधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरः। वो कहती है कि जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति मतलब शिक्षण और श्रीभिर मतलब सौंदर्य, ये चार चीजें जब व्यक्ति के पास होती हैं, एधमान मद कुमान, मद उन्मत्त हो जाता है, नशे में आ जाता है। धन एक नशा है, सौंदर्य एक नशा है, ऊंचा जन्म एक नशा है, ज्यादा शिक्षा शिक्षण प्राप्त करना एक नशा है। नशे में आकर आदमी क्या करता है, अपने वास्तविक अस्तित्व को भूल जाता है। आपने देखा होगा कोई शराब पिया हुआ आदमी बोलेगा मैं बादशाह हूँ, मैं राजा हूँ, मतलब असली कौन है वो भूल जाता है। उसी तरह से जब आदमी को ज्यादा घमंड हो जाता है इन चीजों के प्रति, इन चीजों की वजह से, तो अस्तित्व को भूल जाता है। निवारती अभी धातु वही त्वाम अकिंचन गोचर, इसलिए है प्रभु आपके चरणों में कौन आ सकते हैं, श्रद्धा भाव से आपका नाम कौन पुकार सकते हैं, केवल जो अकिंचन है, जिनके पास कुछ नहीं है वो आ सकते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी भी अकिंचन है जरूर होगा, ये गारंटी नहीं है। अगर उस गरीब आदमी के मन में बहुत इच्छा है कि मुझे भी ये चाहिए वो चाहिए, तो वो अकिंचन नहीं है। हालांकि उसके पास कुछ नहीं है लेकिन मन में बहुत कुछ है, प्राप्त करने की इच्छा है। दूसरे अगर कोई अमर आदमी है, अमीर आदमी है, उसके पास बहुत कुछ है, सौंदर्य है, शिक्षा है, ये है, धन है, लेकिन मन में समझ लेता है कि ये मेरा नहीं है, भगवान का है, तो वो अकिंचन। मतलब अकिंचन केवल भारी आर्थिक परिस्थिति या भारी दृष्टि आर्थिक परिस्थिति का सवाल नहीं है, अपनी मानसिक स्थिति, अपनी चेतना का सवाल है। चेतना में अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सुंदर हो, कुरूप हो, अशिक्षित हो, शिक्षित हो, ऊंचे कुल का हो, नीच कुल का हो, अगर वो जान ले कि जो भी कुछ मेरे पास है ये भगवान का है और ये सब भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए और भगवान की भक्ति प्राप्त करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, मैं भक्तों के दासों के दासों का दास हूँ, अगर ये भावना उसके अंदर है तो वो अकिंचन है, वो भगवान के शरण में जा पाएगा। तो भक्ति में ये एक ही योग्यता है हमारी कि हमको नम्र बन के भक्तों के संग में श्रद्धापूर्वक रहना चाहिए, बस।